ओम शांति। कितने जन्मों का पुण्य और कितना सौभाग्य है हम सबका, बाप दादा के रथ जिन्हें देखकर सहज ही बाबा की याद स्मृति में आ जाती है। ऐसे आदरणीय गुलजार दादी का क्लास हम सभी अभी करेंगे।
ओम शांति। शिव बाबा कहते ही है कि ब्राह्मण जीवन में सुनना अर्थात स्वरूप में लाना। क्यों, सुनते और सुनाते तो दुनिया में बहुत है, सुनते भी आए हम लोग भी जब ज्ञान के पहले थे, तो अनेक जन्म हम लोगों ने भी शास्त्र वगैरह, भागवत गीता वगैरह सब बहुत सुना, लेकिन स्वरूप में नहीं लाया। और बाबा कहते हैं सुनना अर्थात बनना। जो बाबा ने कहा वैसा ही बाप समान बनना, ये है ब्राह्मण जीवन। तो हम सभी जो भी बैठे हैं, वो सभी ब्राह्मण जीवन वाले हैं ना। जीवन है, सिर्फ ब्राह्मण नहीं है लेकिन ब्राह्मण जीवन है। तो जीवन कोई 2 घंटे 4 घंटे की नहीं होती है, जब तक पैदा हुए और जब तक जिंदा है तब तक जीवन है। तो बाबा हमको कहते हैं कि निरंतर योगी रहो, सहज योगी रहो। तो निरंतर का अर्थ ही है कि सदा रहना। ऐसे नहीं हम समझे भाई 2 घंटा तो हमने योग बहुत अच्छा किया, 2 घंटा बहुत अच्छा योग लगा, ये भी बहुत ही है, लेकिन नहीं। हमारी योगी जीवन है। योग लगाने वाले सिर्फ नहीं है लेकिन योगी जीवन वाले है। तो जीवन तो चलते फिरते भी होती है कि सिर्फ बैठ करके ही जीवन होती है? चलते फिरते काम काज करते भी तो जीवन होती है ना। तो हम योग लगाने वाले योगी सिर्फ 4 घंटा 6 घंटा लगाया वो नहीं है, हम जीवन योगी जीवन वाले। तो योगी जीवन में कितना मजा है, और योग है भी क्या, बहुत सहज है। ऐसा कोई भी यहाँ, चाहे बहन हो चाहे भाई हो, ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको किसी न किसी को याद करने का अभ्यास न हो। है कोई ऐसा जिसको याद करने का पता ही नहीं है याद कैसे किया जाता है? किसी को भी, चाहे आप कोई व्यक्ति को याद किया, संबंध से याद किया, चाहे कोई चीज को, वस्तु को याद किया, व्यक्ति को याद किया, याद करना तो आता है ना। कोई है जिसको याद करना नहीं आता हो? है कोई? हाथ उठाओ, वो उसको सिखाएंगे ना याद करना। कोई नहीं है, क्योंकि जब पैदा होते हैं तो छोटा बच्चा भी माँ को याद करने जानता है। तो बाबा ने भी हमको और कोई काम नहीं दिया है, बाबा ने बहुत सहज अर्थ बताया है। योग का अर्थ ही है याद। तो याद करना तो हमको आता ही है, सिर्फ उसको चेंज करना है बस। जो चीज आती है उसको सिर्फ परिवर्तन करना, वो तो सहज है ना। भाई आता ही नहीं है हमको याद करना, फिर करें कैसे, करें क्या करें? लेकिन ये तो सबकी आदत है याद। कोई न कोई, सारे दिन में आप देखो हमारे मन में दिल में कोई न कोई याद आती है, वो चाहे व्यर्थ हो चाहे समर्थ हो, लेकिन याद तो आती है ना। जब याद करना हमको आता है तो बाबा ने भी यही तो बात बताई है, और निरंतर क्यों नहीं हो सकता है। सिर्फ याद फालतू के बजाय, यहाँ वहाँ परेशान होने के बजाय एक बाबा को याद करो, और बाबा को याद करके, ऐसे नहीं है हम बाबा को याद करेंगे तो काम नहीं कर सकते, ऐसे नहीं है। बाबा ने कहा है कर्म योगी हो, कर्म करते भी आप देखो अपने जीवन में अगर देखेंगे तो कई काम ऐसे आप करते हो, अनुभव होगा, जैसे मानो कभी कभी कोई भाई बहन अपना अनुभव सुनाते हैं, वही खाना खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं अच्छी तरह से, और फिर खाना खाते कहाँ कहाँ बुद्धि चली भी जाती है। कोई ऐसा विचार होता है तो खाना खाने के बाद कोई पूछता है इस सब्जी में नमक ठीक था, तो सोचता है नमक था होगा तो कहाँ था, तो खाना तो मुख में डाल रहा था, नाक में तो नहीं डाला, खा भी रहा था, लेकिन आपका मन और कहाँ था, तो कहाँ और होने के कारण आपको नमक मिर्ची का पता नहीं पड़ा, लेकिन दो काम किया ना आपने, खाना भी खाया और भी जहाँ भी आपका मन गया वो भी किया। तो अगर हम खाना खाके या कोई भी कर्म करते हुए बाबा को याद करें तो क्या नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। और बाबा को याद करने से क्या होगा, हमारे में शक्तियां आएंगी, क्योंकि बाबा कहने से हमको बाबा का परिचय सारा आता है सामने। बाबा का टाइटल पहला है ही सर्वशक्तिवान, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो आप देखो, आप मानो कभी कोई मित्र को याद करते हो तो आपकी स्थिति कैसी होती है, बहुत प्यार की होंगी, अच्छे अच्छे संकल्प आएंगे। और कोई मानो आपकी अनबनता है, किससे दुश्मन तो नहीं कहेंगे, लेकिन मतलब कोई बात ऐसी उल्टी सुल्टी हो गई और उसकी याद आपकी आती है, उसी समय आपका चेहरा बदलेगा, और उसकी याद आने से आपकी सारी स्थिति जो है वो बदल जाएंगी। तो अगर हम परमात्मा को याद करेंगे जो सर्वशक्तिवान है, ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, शांति का सागर है, सबका सागर है, उसको याद करके अगर हम काम करेंगे कोई भी, तो आप बताओ वो काम कैसा होगा, शक्तिशाली होगा ना। सर्वशक्तिवान के याद से हमारे कार्य में भी शक्ति आ जाएगी, तो फायदा ही है ना, काम भी अच्छा होगा। और आज भी मुरली में, दो चार दिन के मुरली में आया, तो जो बाबा की याद में काम करेंगे ना वो थकेंगे भी नहीं, और आपको अनुभव होगा इस भ्रमण जीवन में, तो बाबा के याद से काम और ही दुगना हो जाता है। ऐसे कहें दुगना क्या, 10 गुना भी हो जाता है, अच्छा भी हो जाता है और ज्यादा भी होता है, क्योंकि खुशी होती है बाबा को याद करने से, जो शक्तियां मिलती है उसमें खुशी भी होती है, प्रेम होता है, खुशी होती है, शांति होती है। तो मनुष्य को जीवन में चाहिए क्या, हम फॉरेन में चक्कर लगाने के लिए गए थे, तो वहाँ एक मजदूर जो रवाजी काम करने वाले, उनसे मैंने पूछा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, इतना हार्ड वर्कर था, तो इतना हार्ड वर्क आप कर रहे हो, लेकिन आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? तो कहा यही जीवन का लक्ष्य है, हम खुश रहें, सुखी रहें, हमारा परिवार जो है वो भी सुखी रहे, यही लक्ष्य है। ठीक है। फिर मैंने पूछा, एक करोड़पति कहो कुछ भी शाहूकार एक था, उससे भी मैंने पूछा आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? इतना जो आप भागदौड़ कर रहे हो, तो आपके जीवन का क्या लक्ष्य है? उसने भी यही उत्तर दिया। जैसे मजदूर ने दिया, वैसे करोड़पति ने भी दिया। तो जीवन का लक्ष्य तो सभी का एक ही है, सुख शांति पवित्रता आनंद प्रेम, यही मनुष्य को चाहिए। और हम ब्राह्मणों को क्या मिल गया है? प्रभु प्रेम मिला है हमको, प्रभु का प्यार बहुत अमूल्य होता है। भक्ति में देखो, सब बेचारे चिल्लाते रहते हैं, पुकारते रहते हैं, हे भगवान एक सेकंड के लिए एक थोड़ा सा अंचली प्यार की दे दो। आप लोगों ने भी भक्ति की होंगी, कोई कोई ने तो की होंगी, और हमको बाबा ने तो प्यार से ही पाल रहा है। हमारी पालना क्या है? प्रभु प्यारी तो है, और प्रभु प्यार के पालना से हम पल करके आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रभु प्यार कोई कम नहीं है, प्रभु प्यार का अनुभव अगर हम कर लें, तो जहाँ प्यार होता है वहाँ सुते ही याद आती। बहुत बहुत भाग्यवान है जो हम सबको प्रभु प्यार प्राप्त हो रहा है। आप देखो रोज मुरली में बाबा कितना प्यार से याद प्यार देता है, किस शब्दों में बाबा याद प्यार देता है? पहले पहले क्या कहता है? मीठे मीठे, कड़वे नहीं कहता, कड़वे भी हो गए तो भी मीठे कहता है, क्योंकि मीठा मीठा कहने से मीठा बन जाएंगे। तो मीठे मीठे, और फिर क्या कहता? सिक्की लदे, परमात्मा के सिक्की लदे है, रवाजी आत्मा महात्मा के सिक्की लदे नहीं है, परमात्मा कहता है सिक्की लदा। फिर लाडले, कितना लाड प्यार, वैसे भी बच्चों से बाप लाड प्यार करता है, माँ लाड प्यार करती है, तो बाबा तो रोज हमको कहते हैं लाडले। तो इतना प्यार, कोई सतयुग में जो श्री नारायण होगा ना, वो भी इतना प्यार नहीं देगा जितना परमात्मा प्यार है। ऐसा प्यार सारे कल्प में आपको मिल ही नहीं सकता। तो इसीलिए इस जीवन भ्रमण जीवन की बड़ी वैल्यू है। ये संगम का समय कम नहीं है, संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ से श्रेष्ठ युग है और सबसे छोटा युग है। अच्छा, ज्यादा में ज्यादा बाबा ने तो फाइनल बताया नहीं है संगम युग की आयु कितनी है। बाबा तो अचानक और एवर एडी का पाठ पढ़ाता है, कहीं पूछते हैं बाबा विनाश की डेट बताओ ना, आप कहते तो हो विनाश होना है लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहा है। सारी दुनिया चल रही है, चलो कुछ नुकसान हो भी जाता है, ये भी हो, अर्थक्वेक भी हो जाती है, ज्वालामुखी भी फट जाता है, सब होता है, लेकिन फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं, भूल भी जाते हैं। तो बाबा ने एक मुरली में कहा कि बच्चे मेरे से पूछते हैं कि बाबा विनाश कब होगा, तो बाबा ने कहा क्यों परमात्म पाठ आपको अच्छा नहीं लगता है? संगम युग पर तो परमात्मा का पाठ चल रहा है, तो बाबा ने इन शब्दों में भी बोला कि कोई मेहमान आपके पास आवे और उनसे आप पूछो कब जाना है, तो कैसे मेहमान क्या फील करेगा? और ये बाबा से पूछते हैं, बाबा विनाश कब होगा, माना बाबा जाएगा था, क्योंकि शिव बाबा तो सतयुग में होगा ही नहीं। तो बाबा ने कहा, विनाश का क्यों सोचते हो? इस जीवन में आपको क्या कमी है जो विनाश का सोचते हो? चलो दुनिया वाले दुखी है, अशांत है, वो बेचारे सोचे कि कब विनाश होगा तो हम मुक्ति को प्राप्त करें, जीवन मुक्ति को प्राप्त करें। लेकिन हमको क्या है? हमको कोई दुख है क्या? अशांति है क्या? और ये चांस परमात्म प्यार का इस युग के सिवाय तो हमको मिलना ही नहीं है। इसीलिए बाबा कहते हैं, संगम युग जो समय है ना, उसका भी महत्व समझो। बाबा दो शब्द बोलते हैं, एक स्वयं का, मैं कौन। पहला शुरू शुरू का पाठ हमारा कौन सा है? आत्मा का पाठ जब पढ़ाते हैं तो क्या कहते हैं, भाई मैं कौन, वो पहेली हल करो। पहला पाठ भी मैं कौन है, और अभी तक भी बाबा कहते हैं कि मैं कौन हूँ ये स्मृति में रखो। जिसको अभी जो बाबा वर्णन करता है, तो बाबा इन शब्दों में वर्णन करता है कि अपने स्वमान को पहचानो। मैं कौन, मैं कौन सी आत्मा हूँ? आत्मा तो सभी है, अज्ञानी जो है वो भी आत्मा है, लेकिन हम कौन सी आत्मा है, मैं कौन हूँ? भगवान ने हमारे को अपना दिल तख्त दिया है। ऐसा तख्त कभी देखा क्या? सतयुग में भी ऐसा नहीं होगा, रतन जर्द का तख्त क्या बड़ी बात है। लेकिन ये परमात्मा का दिल तख्त परमात्मा ने हमको ऑफर किया, अपने दिल तक, मेरे दिल तख्त पर बैठ जाओ, और जितने भी बैठने चाहे उतने बैठ सकते हैं। तो आपको बैठना आता है ना दिल तख्त पर या नहीं? नीचे खिसकाते तो नहीं है? बाबा ने एक मुरली चलाई थी, तो परमात्मा के दिल तख्त पर ही बैठो। जो लाडले बच्चे होते हैं उनको माँ बाप हमेश कहती है, हमारे गोदी में बैठे, झूले में बैठे, मिट्टी में नहीं जाए। तो बाबा ने कहा, तुम्हारे लिए ये देह जो है ना, देह भान में आना, ये मट्टी है। वैसे भी कहते हैं ना लोग, तो भाई क्या है, ये तो मट्टी मट्टी में मिल जाएंगी। तो आप देह भान में आते हो, माना तत्व को छोड़ करके मट्टी में पांव रखते हो, बुद्धि रूपी पांव। ये पांव तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि इस दुनिया में रहते हैं। लेकिन बाबा ने कहा, मन और बुद्धि रूपी पांव आप अगर देह भान में आते हो तो ये मिट्टी में पांव रखते। कहां तख्त, कहां मिट्टी। मिट्टी तो गंदा करेंगी ना, और होता भी है जब देह भान में आते हैं तो कितनी गंदगी आ जाती है, विकारों की विस्तार हो जाता है। सबसे ज्यादा हम हमेशा हर क्लास में पूछते हैं, तो चलो लोभ का अनुभव नहीं हो, लोभ मोह इनका अनुभव नहीं भी हो, लेकिन कोई भी एक आत्मा नहीं होगी जिसको क्रोध का अनुभव नहीं हुआ है। कोई जिसको क्रोध मनसा में भी कभी नहीं अनुभव हुआ हो, वाचा में भी नहीं, कर्मणा में भी नहीं, किसको क्रोध का अनुभव नहीं हुआ हो अभी तक के जीवन में, वो है कोई? है? हाथ उठाओ, प्राइज देंगे उसको। है कोई? क्रोध का अनुभव तो सभी को होता है। तो जहाँ क्रोध होता है, क्रोध होता क्यों है? अवमान से ही तो क्रोध होता है, तो क्रोध के साथ अवमान भी हो गया और मोह भी होता है, लगाव होता है किसी चीज से, वो प्राप्ति नहीं हो तो क्रोध आता है। तो सब विकारों का कनेक्शन है, इसीलिए बाबा कहते हैं जब तुमको मैं तख्त दे रहा हूँ तो मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे मिट्टी में क्यों आते? वो भी एक गीत भी है ना, बहर का भी एक गीत है ना, मिट्टी से बार बार क्यों खेलते हो? देह भान में आना ये मिट्टी से खेलना है, और मिट्टी से तंग भी हो गए है। 63 जन्म क्या किया? 63 जन्म मिट्टी से ही तो खेले, और दुखी भी हुए, अशांत भी हुए, सारे बाबा का खजाना खत्म कर दिया, अनुभव है ना सभी को। और फिर अभी संगम पर भी अगर हम मिट्टी से ही खेले, देह भान में आ जाएं, क्योंकि हम लोग जब क्लासेस कराते हैं तो उसमें स्पष्ट करते हैं कि एक है देह भान, दूसरा है देह भान, देह का अभिमान, और तीसरा है देह का अहंकार। तीन प्रकार का है। देह भान तो कॉमन है, समझो मैं आत्मा भूल करके मैं फलाना हूँ, फलाना मेरा ऑक्यूपेशन है, फलाना ये है, देह के संबंध से भान आता है। अभी देखो आपका नाम समझो जो भी होगा, किसका नाम है कोई भी, मैं दूसरे आपका नाम तो दूसरे का भी तो ऐसा ही होगा ना। मैं मानो उसको बुला रही हूँ, भाई आप आओ, तो आपका भी ऐसे ऐसे करेंगे, आप मेरे को बुला रहे होता है ना ऐसे। नाम आपका भी है दूसरे का भी है, लेकिन मैं दूसरे को कहती हूँ भाई त्रिलोकी नाथ आओ, आपका भी त्रिलोकी नाथ नाम होगा तो आप ऐसे ऐसे करेंगे, मुझे कोई बुला रहा है। कितना नाम याद रहता है, देह का भान याद रहता है ना। योग में भी बैठते हैं, कई भाई बहन ऐसे कहते हैं बहन जी योग में तो बैठे, लेकिन फिर भी बीच बीच में देह भान में आ जाते हैं, आत्मा के बजाय शरीर समझ के बैठ जाते हैं। तो देह भान कितना पक्का हो गया है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये देह भान के मट्टी जो है ना, इसमें मन बुद्धि रूपी पाऊ नहीं रखो। इससे क्या परिणाम है वो हम जान गए, सभी अनुभव है, अच्छी तरह से अनुभव होगा, हमारे से भी ज्यादा अनुभव होगा, क्योंकि आप बड़ी आयु में है, प्रवृत्ति में रहते हैं, संसार में रहते हैं, हम तो बचपन से ही बाबा के संसार में आ गए। फिर भी और कितना सहज है बाबा का, जिससे प्राप्ति होती है उसको कभी भूल नहीं सकते। रास्ते चलते हम कोई ठोकर खाएं और हमको कोई आकर के अनजान भी उठा ले, तो हमारे मुख से क्या निकलता है? हे भाई, हे बहन, आपको तो मैं जीवन भर नहीं भूले, और बार बार वो समय प्रति समय हमको याद आता रहेगा। और बाबा ने तो हमको क्या से क्या बना दिया है, बिल्कुल जैसे एकदम अंधेरे से रोशनी में ले आए, और अंधेरे से रोशनी जीवन में रोशनी ऐसी लाई है, उसका साधन क्या है? यहाँ भी अंधेरा है, अगर रोशनी मानो हमको चाहिए ज्यादा, तो स्विच ऑन करने की तो बात है ना। पहले जमाना तो गया, वो तेल डालो, वो बत्ती जलाओ, वो करो, आजकल तो स्विच ऑन और ऑफ की बात है। ऐसे ही बाबा ने हमको एक सेकंड की स्मृति का स्विच कहते हैं ऑन करो बस। स्मृति का स्विच कौन सा है? मैं कौन? मैं आत्मा हूं बस। ये स्मृति रखना, मैंने वर्णन किया ना, उसमें भी टाइम लगा, मैं आत्मा हूं, लेकिन सोचने में इतना भी टाइम नहीं लगता। जैसे स्विच ऑन करना होता है, ऐसे स्मृति का स्विच बाबा ने दे दिया है, उसको सिर्फ ऑन माना, स्मृति में रहना, तो ये क्या मुश्किल है। और हुई मैं आत्मा, सारा दिन बाबा ने एक मुरली में कहा था कि सारा दिन आप मैं शब्द कितने बारी कहते हो, गिनती करो, सारे दिन में कितना बारी मैं शब्द बोलते हैं हम। लेकिन मैं कौन? मैं शरीर हूं कि शरीर मेरा है? कभी भी गलती से हम नहीं कहते हैं आज मैं सिर में दर्द हूं, कभी गलती से कहते हैं क्या? आज मेरे सिर में दर्द है, आज मेरी तबीयत खराब है, मैं तबीयत खराब हूं, ये तो नहीं कहते है ना। तो मैं कौन? तो बाबा ने कहा था अगर सहज पुरुषार्थ करना है तो जितने बारी भी आप मैं शब्द बोलते हो ना, तो मैं शब्द बोलते ही याद करो मैं आत्मा हूं। मेरा ओरिजिनल स्वरूप जो है वो आत्मा है, ये शरीर तो मेरा है। तो मेरे को मैं के बजाय मेरे को मैं मान दिया है। अगर किसी से भी हमको याद है, हम बनारस में गए थे, बनारस में क्या है, वहां के बनारस के पंडित बहुत वो मशहूर है, तो हम लोगों ने पंडितों के स्नेह मिलन किया था। तो स्नेह मिलन में जब सभी बैठ गए तो हम लोगों ने उनको कहा आप अपना परिचय दो। अरे एक एक पंडित ने जो अपना परिचय दिया ना, पूरी कविता आप तैयार कर सकते हो, इतना बड़ा परिचय दिया। जब इतना बड़ा परिचय देके उठे तो हम लोगों ने उनसे सवाल पूछा कि ये मैं का परिचय है या मेरे का परिचय है? सब चुप हो गए क्योंकि शरीर तो मेरा है, मैं तो है ही नहीं। लेकिन इतना मेरे का परिचय, बॉडी कॉन्शियसनेस इतना पक्का हो गया है, कितना लंबा परिचय देते हैं। और सारा दिन स्मृति में भी वही बॉडी कॉन्शियस करना चाह रहता है, मैं फलाना हूँ, डायरेक्टर हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं फलाना हूँ, मेरा परिवार ये है, लखपति हूँ, करोड़पति हूँ, जो भी है। लेकिन नशा कितना रहता है, उल्टा देह अवमान आ जाता है, देह अहंकार है बहुत करा रूप, अहंकार में आकर के फिर ईर्ष्या करेगा, असत करेगा, सब करेगा। लेकिन देह भान को भी छोड़ के हमको देही आत्मा, देही माना आत्मा, आत्मा के भान में रहना। और यही बाबा ने पहला पाठ हमको पढ़ाया। अंत में भी अगर इसी स्मृति में जाएंगे, मैं कौन का पाठ पक्का कर लो, सारा दिन अपने से पूछो मैं कौन, मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाबा मुरली में इतने टाइटल बताते हैं, हमने क्लास में सभी को कहा कि सारी मुरलियां जितनी भी सुनी है ना आपने, तो स्वमान माना टाइटल जो बाबा देते हैं, तो लिस्ट निकालो। जब से मुरली सुनी है तब से बाबा हर मुरली में कोई न कोई टाइटल, यानी हमको स्वमान की स्मृति दिलाते हैं। अगर उसकी लिस्ट निकालो, बड़ी लंबी है, दुनिया वालों को टाइटल मिलता है वो कौन देता है? मनुष्यात्मा मनुष्यात्मा को देती है। लेकिन हमारे को टाइटल देने वाला कौन? परमात्मा। परमात्मा द्वारा हमको टाइटल मिले है, उसका कितना महत्व होगा। और रोज अगर आप मुरली सुनते हो या पढ़ते हो तो हर मुरली में कोई न कोई टाइटल स्वमान होता है। अपने मन और बुद्धि को अगर वो होमवर्क दे दो ना, आजकल होमवर्क बच्चों को इतना देते हैं वो बेचारे चिल्लाते हैं, कहते होमवर्क इतना देते हैं टीचर जो थक जाते हैं। लेकिन क्यों देते हैं टीचर होमवर्क? तो उनका घर की बातों में बुद्धि नहीं जावे, पढ़ाई में ही रहे। ऐसे बाबा भी हमको कहता है कि एक सोमान अपना समृद्धि में रख लो और वो मन और बुद्धि को होमवर्क दे दो। भाई आज बाबा ने कहा है तुम रूहानी यात्रा पर हो, रूहानी यात्रु हो, मानो। तो सारा दिन मन और बुद्धि मैं रूहानी यात्रु हूँ। यात्रा कौन सी है, मंजिल कौन सी है, और मंजिल का मंजिल में प्राप्ति क्या है, और ले जाने वाला हमारा पंडा कौन है जो यात्रा कराता है, इसके डिटेल में सोचते रहो सोचते रहो। मन इसी में ही बिजी रहे तो माया तो बेचारी की ताकत ही नहीं है आपके पास आने की। बार बार युद्ध करनी पड़े, नहीं ये नहीं ठीक है बाबा बाबा। फिर कई भाई ऐसे कहते हैं माया आती है ना, तो हम कहते बाबा 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 बचाओ, बाबा बाबा ये कृपा करो, बाबा दया करो, बाबा ये। बाबा कहते फरियाद करते हो या याद करते हो? ये तो फरियाद हो गया ना, याद थोड़ी हुई। तो फरियाद से थोड़ी कोई प्राप्ति होगी, याद से प्राप्ति होगी ना। लेकिन माया आवे ही क्यों? अगर हम बिजी है, हमने देखा है दिल्ली में बड़े बड़े ऑफिसर क्या करते हैं, होते अंदर है लेकिन बाहर बोर्ड लगा, वो तख्ती लगा देते हैं आउट, क्योंकि उनको काम करना पड़ता है। और बीच बीच में बार बार कोई मिलने जावे तो उनका काम नहीं पूरा हो सकता है, तो ऐसे करते हैं आउट का बोर्ड लगा देते हैं। जो भी आएगा देखेगा आउट लिखा हुआ है, ठहरेगा क्या, वापस चला जाएगा ना आप ही। तो माया भी मन और बुद्धि को अगर आप ये होमवर्क दे दो ना, बिजी रखो, तो आपका मन बुद्धि बिजी होने के कारण माया आएंगी भी, देखेंगी ये इतना बिजी है, आप ही चली जाएंगी, आपको युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बार बार युद्ध ही करते रहेंगे क्या, चंद्रवंशी है या सूर्यवंशी बनना है, क्षत्रिय माना चंद्रवंशी, तो अंत तक हम युद्ध ही करते रहेंगे और अंत मते फिर जाएंगे भी त्रेता युग में, सतयुग तो खत्म हो जाएगा आपके पहले। तो क्या हुआ, राजभाग लिया लेकिन आधा समय तो बीत गया, त्रेता में आएंगे, चंद्रवंश में आएंगे, 14 कला में आएंगे, 16 कला तो पूरा हो जाएंगे। तो क्या पूरा वर्षा लिया आपने, वर्षा तो पूरा लेना चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं बार बार युद्ध नहीं करो, चलो शुरू में युद्ध करनी पड़ती है। कई भाई ये कहते हैं अज्ञान काल में तो माया से युद्ध करने की बात ही नहीं थी, ज्ञान में आने के बाद और युद्ध हुई है, माया का परिचय हो गया है, पहले तो माया का पता ही नहीं था। अरे आपने ज्ञानी बने हो तब भी माया को चैलेंज की है, तो हम माया जीत बनेंगे कि ये चैलेंज, माया जीत बनेंगे ना, तो माया को चैलेंज की है तो दुश्मन ऐसे ही बैठ जाएगा, कहेगा हाँ बहुत अच्छे हो तुम ही जीतो, मैं नहीं जीत, कुछ नहीं करता हूँ। ऐसा कोई दुश्मन होता है क्या? तो हमने चैलेंज की है माया जी माया को, तो मैं माया जीत बनूंगी बनेगा, तो माया जरूर सामना करेंगी ना। अज्ञान काल में तो थे ही माया के, अपनों से थोड़ी लड़ेंगी। हमने अभी चैलेंज किए, हम माया जीत बनने वाले हैं, तो माया को चैलेंज किए इसलिए माया आती। माया का काम, बाबा कहते हैं माया का काम है आना, वो अपना काम नहीं छोड़ती है। और हमारा काम क्या है, माया के ऊपर जीत प्राप्त करना। तो माया अपना काम नहीं भूलती है और हम ब्रह्मर आत्माएं मास्टर सर्वशक्तिवान, हमारा जो काम है जीत प्राप्त करना, वो हम क्यों भूल जाते हैं। इससे तो माया होशियार हो गई हमारे से। हमको अपना काम याद करना चाहिए ना, माया तो आएंगी, जब चैलेंज किए तो आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, लेकिन हमें माया जीत बनना है। और माया जीत बनने का बहुत एक अक्षर आप याद करना, क्या होता है, माया से हार तब होती है जब हम कमजोर हो जाते। कई बातों में पुरुषार्थ करते करते दिल शिकस्त हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं ना, तो माया को चांस मिलता है आने का। कमजोर के ऊपर ही तो वार करेंगी ना, लेकिन माया जीत बनने का साधन एक शब्द है, हम कितने भी कमजोर है अच्छा, लेकिन हमारे कंबाइंड कौन है, हम अकेले हैं, हमारे साथ शिव बाबा जो सर्वशक्तिवान है वो कंबाइंड है हमारे साथ कि नहीं है। साथ वाला अलग हो सकता है, कंबाइंड कभी अलग नहीं होता है। तो सर्वशक्तिवान मेरे कंबाइंड है, तो संग का रंग आपको नहीं लगेगा। सर्वशक्तिवान कंबाइंड रूप में है तो आप अकेले थोड़ी हो जो कमजोर सोचते हो। कभी अपने को कमजोर नहीं सोचो, शिव बाबा कंबाइंड रूप है। ये कंबाइंड रूप जो है शब्द, वो पक्का याद रखो, मैं अकेला नहीं हूँ। कई बार कई भाई जो है वो कहते हैं, कभी कभी पता नहीं क्या ऐसा अकेलापन लगता है, कहाँ सागर के किनारे चले जाएं, कहाँ बगीचे में चले जाएं, अकेला अकेला, कोई गलती भी नहीं की, फिर भी अकेला अकेला, वैराग जैसे खुशी नहीं। अरे अकेले हो ही नहीं, आप कंबाइंड हो। बाबा आपसे अलग हो ही नहीं सकता है। तो ये सारी अवस्थाएं तब आती है जब हम कंबाइंड शब्द के अनुभव को भूल जाए। बाबा कंबाइंड है, हमको क्या परवाह है। अरे सर्वशक्तिवान रवाजी नारी जाति रात्रि को अंधेरे में जाने में डरेंगी, अगर कोई अच्छा बहादुर उसके साथ होता है, कितना नशे से चलती है, मैं अकेली थोड़ी हूँ, मेरे साथ बहादुर है। और हमारे साथ तो सर्वशक्तिवान है, कोई शक्तिवान थोड़ी है, महात्मा थोड़ी है, धर्मात्मा थोड़ी है, परमात्मा है। तो कितना नशा होना चाहिए, कितनी रूहानी मस्ती होनी चाहिए। और युद्ध क्यों करें, माया का काम आना है, हमारा जीत प्राप्त करना है, बस विजय। विजय बाबा ने कहा, विजय तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वो अधिकार बर्थ राइट कोई हमारा ले नहीं सकता है। विजय हमारे गले की माला है, विजय हमारा बर्थ राइट है। तो क्यों नहीं हम विजयी बनेंगे, हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। और बाबा ने कहा ना, आपको नई बात क्यों लगती है, ये माया आ गई। फिर कई भाई ऐसे कहते हैं, बहन जी आपको क्या पता, आप तो आश्रम में रहती हो ना, हम बाहर रहते हैं ना, तो वायुमंडल ऐसा होता है। अरे वायुमंडल को हम तो आपके सुन सुन के, आप तो एक को अनुभव होता है, हमें तो हजार सुनाने वाले, हमको कितना अनुभव होगा। सुनाने से भी तो अनुभव होता है, ऐसे थोड़ी कुएं में गिर के देखे तभी कहेंगे कुएं का गिरने का अनुभव क्या होता है। सोच देख करके भी तो अनुभव होता, सुन के भी तो अनुभव होता। तो ऐसा नहीं है, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन वायुमंडल को जीतने के लिए हमारी वृत्ति कितनी शक्तिशाली है, हमारे वृत्ति से वायुमंडल बदल जाएगा। हमारा ठेका है, आप सभी बाबा के साथ ठेकेदार हो ना, विश्व को परिवर्तन करने वाले, उठाए ना ठेका। जब प्रकृति को भी हम बदली कर सकते हैं, तो ये क्या छोटी छोटी बातें। इसीलिए बाबा कहते हैं सदा याद में रहो, और याद बहुत सहज है, बस मेरा बाबा, बस एक ही दिल से शब्द बोलो, मेरा बाबा, बस बाबा नहीं, मेरा कहेंगे तो ममता जाएंगी बाबा में, याद आएंगी। सर्व भगवान अज्ञान काल में क्यों नहीं बाबा से प्यार होता, परमात्मा से, वो के हजारों सूर्य से तेजोमय, अरे हम उसको याद करेंगे तो पहले हजारों सूर्य का सेक तो मेरे पास आएगा, पहले मैं जलूंगी, याद क्या करो। लेकिन बाबा ने हमको परिचय दे दिया, मैं ज्योति बिंदु हूँ, बस एक बिंदी शब्द को भी याद करो तो भी मेरा पार हो जाएगा। लेकिन क्या होता है, लगाते हैं बिंदी, बन जाता है क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क देखो कितना टेढ़ा होता है, और बिंदी कितनी सहज है। तो बाबा कहते क्वेश्चन मार्क क्या, ये जो दूसरी जो भी मात्राएं होती है उस लगाने की जरूरत ही क्या है, सिर्फ बिंदी लगाओ, बस तीन बिंदियों का तिलक रोज अमृत वेले लगाओ, एक मैं आत्मा बिंदी, दूसरा शिव बाबा बिंदी, तीसरा ड्रामा में जो कुछ बीता वो फुल स्टॉप, वो भी बिंदी। तीन बिंदियों का तिलक रोज अमृत वेले अपने को लगाओ, तो सारा दिन आपका बहुत खुशी में, शांति में, शक्तिशाली बीतेगा। ओम शांति।